الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم دین کی سمجھ کا ملنا بہت بڑی نعمت ہے. ویسے تو عقل اور سمجھ ہی خود بڑی چیز ہے, لیکن سمجھ اللہ دین کی عطا فرمائے تو یہ اور بھی بڑی نعمت ہے. اور یہ نعمت ہر ایک کو نہیں ملتی جس کے ساتھ اللہ تعالی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں, اور جو کچھ چاہتا ہے کہ میرے ساتھ خیر ہو اس کو اللہ تعالیٰ یہ نعمتوں سے نوازتے ہیں. ذالک الفضل من اللہ. اب دین کی سمجھ کہ کہاں گناہ ہو رہا ہے, کہاں ایمان میں کمی آ رہی ہے, کہاں غفلت ہو رہی ہے, کہاں میں غلط قدم اٹھا رہا ہوں, کہاں اللہ کی ناراضگی ہے, یہ تمام کی سمجھ پیدا ہو یہ بڑی بات. حضرات صحابہ کرام کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کر یہ شرف حاصل ہوا تھا. انہوں نے بڑی بڑی کتابیں جیسے آج پڑھی جاتی ہیں پڑھائی جاتی ہیں وہ نہیں پڑھی, لیکن سب سے بڑی کتاب قرآن کریم اور دوسری بڑی نعمت سرکار کی صحبت انہیں نصیب ہو گئی. یہ دو نعمتوں نے انہیں بڑا باکمال بنا دیا اور دربار ربانی سے ان کو رضی اللہ عنہ کا خطاب دلوا دیا. فضائل اعمال میں بھی لکھا ہے, دوسری روایت کی کتابیں جو ہے اس میں بھی ہے, احادیث کی کتابوں میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ آدمی کو کچھ جانے کا احساس ہو, جس کو فالج ہو جاتا ہے, لقوے کا اثر ہو جاتا ہے, تو طبیب سب سے پہلے پن چبھا کر وہ متاثرہ حصے میں دیکھتا ہے کہ اس میں کچھ احساس ہے کہ نہیں. اگر احساس ہے تو محنت کرتا ہے, احساس نہیں ہے تو وہ بھی پریشان ہو جاتا ہے. جیسے کہ فالج کے حملے سے جو حصہ متاثر ہو کر اثر لینا اور احساس چھوڑ دیتا ہے, اس طرح ایمان پر بھی فالج کے حملے ہوتے ہیں. گناہوں کی کثرت کی وجہ سے احساس گناہ ختم ہو جاتا. مرحوم اقبال نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے, وائی ناکامی متائے کارواں جاتا رگاں और कारवां के दिल से एहसास जिया जाता रहा। ये शेर को जरा एक मिनट के लिए समझना पड़ेगा। मताए कारवां यानी काफले वालों का सामान। पहले जमाने में लोग तन्हा इक्का दुक्का रातों को सफर नहीं करते थे, काफलों में सफर करते थे। तिजारती लोग तिजारत का सामान लेकर पूरे काफलों में चलते थे और जब लूटता था तो पूरे काफले का सामान लूटता था। इक्का दुक्का आदमी तन्हा तो चल नहीं सकता था, जब काफले लूट जाते थे तो अकेले को तो जान से ही मार दें वो। इकबाल का ख्याल ये है कि कोई काफला लूट जाए, डाकुओं ने हमला किया, माल सामान लूट लिया, तो ये गम की बात तो है। लेकिन फरमाते हैं उससे बड़ा गम और उससे बड़ा सदमा इस बात पर है कि जिन लोगों का सामान लूटा उन्हें सामान लूटने का एहसास भी नहीं है। ये तो और खतरनाक पोजीशन है ना। जैसे कि फालिज की वजह से जो हिस्सा मुतासिर हुआ वो एहसास से खाली हो गया तो फिक्र की बात हो गई, यहां सामान लूटने का एहसास खत्म हो गया तो वो फिक्र की बात हो गई। तो ईमान वाले के लिए गुनाहों से उसका ईमान लूट रहा हो इसका एहसास अगर खत्म हो जाए तो वो उससे भी बड़ी फिक्र की बात। हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह जिस काफले में फारिग होने के बाद वापस जा रहे थे तो जब काफला लूटा तो उनकी किताबें भी डाकुओं ने छीन ली। अब किताबें तो कपड़े में बंद करके रखी थी, पता नहीं था कि अंदर है क्या, वरना डाकुओं से किताबों से क्या लेना। तो जब किताबें लेके डाकू जाने लगा तो इमाम गजाली ने कहा ये 10 साल की मेहनत मेरी लेके तू जा रहा है, मैं तो कोरा रह जाऊंगा, मैंने तो 10 साल की असातिजा की तकरीरें सब लिखी है इसी में, तो अगर तू किताबें ले गया तो मेरे पास इल्म के नाम पर क्या रह जाएगा। डाकू ने किताबें तो वापस कर दी लेकिन एक जुमला बड़ा चुभता हुआ कह गया कि ये तेरा इल्म काम का क्या है कि किताबें लेके जाए तो तू बगैर इल्म का रह जाए और किताबें न हो तो तू आलिम भी न कहलाए, तो ये मेहनत क्या काम की। इल्म तो ऐसा होना चाहिए कि सीने के अंदर ताजा हो, ये सफीनों के अंदर इल्म कुछ काम का नहीं है। किताबों में इल्म नहीं, जिंदगियों में इल्म चाहिए, इतना तुझे मालूम नहीं। कहते हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने डाकू के इस जुमले का बहुत असर ले लिया। कोई दिल पर असर का आना और एहसास का होना बहुत बड़ी बात। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में सहाबाए किराम हाजिर हुए थे और हाजिर होकर अर्ज किया कि सरकार ऐसे वसवसे आते हैं कि हम मर जाना पसंद करेंगे लेकिन ये वसवसे जो आते हैं इनको जबान पर लाना जो है गवारा नहीं है। वसवसे ऐसे आते हैं, आज भी शिकायत है वसाविस की, खतरनाक वसाविस आ रहे हैं। मशायख फरमाते हैं कि वसाविस अलामतें ईमान है, जिसके पास ईमान है ही नहीं उसको वसवसा भी कुछ नहीं आता। वसवसे शैतान वहां डालता है जहां कुछ होता है, हमला वहां किया जाता है जहां कुछ होता है, पत्थर वहां मारे जाते हैं दरख्त पर जहां फल होते हैं। तो शैतान वसाविस डालता है अंदर के ईमान की मता लूटने के लिए। तो वसवसा है तो अलामत ईमान, लेकिन हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सवाल किया कि ये वसवसों को तुम कैसा समझते हो? फरमाया बहुत बुरा समझते हैं। अच्छा तो नहीं समझते ना? कहा नहीं हुजूर, बयान करना इससे मर जाना जो है वो पसंद करेंगे, लेकिन इसका इजहार पसंद नहीं करेंगे। फरमाया अलामत ईमान है, वसवसों को चाहना शुरू कर दो तो तुम्हारे ईमान के खतरे की बात है। लेकिन वसवसों को बुरा समझा तो कौन सी चीज इसे बुरा समझने पर मजबूर कर रही है? तो तुम कहोगे कि अंदर का ईमान मना करता है कि ईमान के साथ ये चीज जमा नहीं हो सकती। नबियों का काम असल में ये होता है कि दिल की जो तंगियां हैं और दिल में आने वाले इश्कालात हैं, उन इश्कालात को इस तरह से दफा करते हैं और रफा करते हैं और दिल को हल्का कर देते हैं। इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह ने दिल पर इतना असर ले लिया कि सब किताबें कोने में रख दी और फिर मेहनत करना शुरू किया और तसनीफ करना शुरू किया तो कई जिल्दों में उम्मत के सामने इहयाउल उलूम जो है वो आई। ये इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की बड़ी शाहकार तसनीफ है, बड़ी अजीब और गरीब किस्म की तसनीफ है, पूरा इंसाइक्लोपीडिया इस्लाम का उन्होंने जो है वो अपनी इस किताब के अंदर जमा करके और समेट कर रखा है। अपनी तमाम इल्मी काविशों का खुलासा उन्होंने इहयाउल उलूम की शक्ल में पेश किया। उसके बाद तो उनकी कई किताबें और भी आई। बड़े उलमा में से हैं इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह की पैदाइश गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह के इंतकाल के दिन हुई। ये दुनिया उलमा से खाली नहीं रही, अहलुल्लाह से खाली नहीं रही। जब गौसे आजम रहमतुल्लाह अलैह इस दुनिया से जा रहे थे तो जरूरत थी इस दुनिया के कोई अल्लाह वाला फिर जो है तजदीदी कारनामे अंजाम दे, तो उसी दिन अल्लाह ने हजरत इमाम गजाली रहमतुल्लाह अलैह को दुनियाए रंगोबू में वजूद अता फरमाया। हजरत हंजला रदी अल्लाह ताला अन्हो का वाकया फजाइल आमाल में भी लिखा है। फरमाते हैं कि सरकार के दरबार में अक्सर तशरीफ रखते थे, बैठते थे, बातें सुनते थे। सरकार के बयानात कभी लंबे और कभी मुख्तसर, जैसी जरूरत होती थी उसके मुताबिक होते थे। मौजूदा जमाने की तरह नहीं कि सुबह से लेकर हो रहे हैं बयान और तय कर दिया कि इतने घंटे बोलना है। ये सरकार के बयानात की खूबियों में से नहीं है। जरूरत पड़ी तो पूरा दिन बयान किया, जरूरत पड़ी तो एक मिनट में बयान खत्म कर दिया। जैसी जरूरत उसके मुताबिक सरकार की तफसीर और आपकी तकरीर और आपका बयान होता था। मामूली आलिम के बयान में बैठते हैं तो आखिरत का एहसास और आखिरत का ध्यान और अल्लाह का ध्यान जो है वो मिलता है, नसीब हो जाता है। तो सरकार के यहां बैठते होंगे तो सहाबा कहां से कहां पहुंच जाते होंगे। फरमाते हैं हुजूर के दरबार में बैठकर बात सुनते हैं तो यूं महसूस होता है कि जन्नत सामने है और जहन्नम सामने है और पुल सिरात सामने है और मीजान सामने है और लोगों के हिसाब होते हुए नजर आ रहे हैं। याद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तवज्जो और आपके बयान की बरकत हुआ करती। यहां से उठकर घर गए, घर पर जाने के बाद बच्चों में और बीवी के अंदर जरा मसरूफ हो गए। घर गृहस्थी है, संसार है, संसार छोड़ने को तो इस्लाम ने कहा नहीं है। तो घर जाके घर के कामों में लगे, बीवी बच्चों में लग गए तो थोड़ी देर के बाद वो एहसास शुरू हुआ। और मैं कह रहा था कि एहसास बड़ी चीज है। जब एहसास अंदर का आदमी का मर जाता है तो उसे वो गुनाह कर रहा है लेकिन मालूम नहीं होता कि वो गुनाह कर रहा है। वो गुनाह में कभी कभी नदामत के बजाय फख्र करता है। मिजाज ऐसा बन गया कि गुनाह पर मौजूदा दौर में फख्र मबाहात हो रही है। एक अखबार पढ़ रहा था, उसमें लिखा था कि चंद दिल्ली के बड़े मालदार लोगों के बेटों ने शराबें मंगाई थी, एक बोतल 25 लाख रुपए की बोतल और 50-50 लाख की गाड़ियों में रात को आए और बोतलें रखी हुई है गार्डन में और पूरी बोतल किसी को पीना नसीब नहीं होगा। पांच छह शहजादों ने मिलकर 25-25 लाख की एक एक बोतल मंगाई है और पूरी रात आधा घूंट और एक घूंट और दो घूंट लेने वाले हैं और उसके लिए रात बर्बाद की है। 25 लाख में तो 25 नहीं 250 इंसान गरीब जो हैं वो संभल सकते हैं, लेकिन अपनी ऐशो इशरत और नफ्स की ख्वाहिश को संभालने के लिए 25 लाख रुपया एक नापाक और नाजायज चीज के ऊपर खर्च हो रहा है और इसके ऊपर फख्र किया जा रहा है कि हमने जो है 25 लाख की शराब पी। जब सोच इंसान की बदल जाती है, बिगड़ जाती है, तो फिर उयूब जो है वो कमालात बनकर सामने आते हैं और कमालात के ऊपर पर्दा पड़ जाता है, उसको लोग उयूब समझना शुरू कर देते हैं। फ्रांस के सदर ने अपनी पार्लियामेंट में पर्दे के खिलाफ बिल पास कर दिया, तो मुझे कोई कह रहा था कि उन्होंने पर्दे के खिलाफ बिल पास कर दिया। मैंने कहा जिसकी जिंदगी ऐशो इशरत में और नाजायज ताल्लुकात में गुजरी हो, जाहिरी बात है कि उसको पर्दे की बात समझ में नहीं आ सकती। हाँ, कोई आलिम देवबंद के जमा हो जाए और वो पर्दे के खिलाफ बिल पास करें तो हमको फिक्र होगी कि इन्होंने ऐसा बिल कैसे पास कर दिया, इन्होंने ऐसा कायदा कैसे पास कर दिया। वो फ्रांस के सदर जो बदकारियों में मशहूर हैं, उनसे इसकी तो उम्मीद नहीं की जा सकती कि वो पर्दे की तायीद करेंगे। ऐशो इशरत का दाद देने वाला, बुराइयों में डूबा हुआ और बदकारियों में जिंदगी गुजारने वाला पर्दों का तरफदार और तर्जुमान नहीं हो सकता, इसलिए इस पर ताज्जुब करने की जरूरत नहीं है। उनसे तो यही तवक्को थी जो वो कर रहे हैं, लेकिन ऐसे कितने भी बिल पास हो जाएंगे और दुनिया कितने भी कायदे बनाएगी, लेकिन अल्लाह का कानून और कुरान करीम ने जो फलसफा बयान किया उसके खिलाफ हम जिंदगी गुजार ही नहीं सकते। मुल्क छोड़ सकते हैं, ऐसे सदरों को लात मार सकते हैं, ऐसे कानून बालाए ताक रखे जा सकते हैं, लेकिन अल्लाह के फरामीन के आगे कोई चीज बड़ी नहीं। दुनिया का कोई सदर बड़ा नहीं, कोई कानून खुदा के कानून से बड़ा नहीं। हम तो अल्लाह के कानून के मतवाले हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह और मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ही यह है कि अल्लाह की तरफ से जो फरमान आएगा मान के चलेंगे और सरकार जो तरीके बताएंगे, दुनिया चाहे कुछ भी उसे बुरा कहे, लेकिन हम इसकी वजह से सरकार के बतलाए हुए रास्तों को छोड़ नहीं सकते। सारा जहां नाराज वो परवाना चाहिए, मद्दे नजर तो मर्जी जाना ना चाहिए, बस इस नजर से देख के कर तू ये फैसला, क्या क्या तो करना चाहिए क्या क्या ना चाहिए। ऐसे कानून से मुतासिर होकर इस्लामी कानून को मशकूक नजरों से मत देखो। ये फैसले करने वालों की निगाहें और उनकी अकलें मशकूक हो सकती हैं, अल्लाह का कानून मशकूक नहीं हो सकता। वो तो कयामत तक आने वाली इंसानियत के लिए बना हुआ कानून है, वक्ती सदरों के बनाए हुए कवानीन नहीं। इसलिए नजर उस पर हमेशा रखो। लोग कहते हैं कि क्या होगा इस्लाम का ऐसे ऐसे कानून, कुछ भी होने वाला नहीं है। जो दीन को बाकी रखने का अल्लाह ने वादा फरमाया है, दुनिया की कोई ताकत उसे मिटा नहीं सकती। मैं नहीं चलूंगा हटा दिया जाऊंगा, आप नहीं चलेंगे हटा दिए जाएंगे, मुल्क नहीं चलेंगे तो उन्हें हटा दिया जाएगा। दीन अपनी जगह अल्लाह बरकरार रखेगा और इसकी मदद करने वालों की दुनिया आखिरत में मदद होगी। अल्लाह फरमाते इन तंसुरुल्लाह यंसुरुकुम व युसब्बित अक़दामकुम। जम के रहो, अल्लाह के फैसलों पर यकीन रखो, अल्लाह के बतलाए हुए कवानीन पर यकीन रखो। सरकार ने जो तरीके जिंदगी जीने के बताए, हया और आबरू के साथ जिंदगी गुजारने का बड़ा महदूद और प्यारा तरीका बताया, उसी को अपनी जिंदगी का नस्बुल ऐन बनाओ, यही कामयाबी का रास्ता है। हजरत हमजला रदी अल्लाह ताला अन्हु गौर कर रहे थे, फिक्र फरमा रहे थे, कि सरकार के यहाँ तो मेरा हाल कुछ और था, लेकिन यहाँ घर आने के बाद मेरा हाल कुछ और हो गया। और मुनाफिक इसी को कहते हैं ना, सरकार के यहाँ कुछ हाल, घर में आकर कुछ हाल, वहाँ जन्नत और जहन्नम सामने देखकर आंखों से आंसू रवा थे, और यहाँ बीवी बच्चों में ऐसा फंस गया कि न जन्नत सामने, न जहन्नम सामने, न आखिरत सामने। तो क्या मैं मुनाफिक हो गया हूँ? जो मुनाफिक थे उनको तो कभी अपने मुनाफिक होने का ख्याल नहीं आया। अबू जहल को अपनी जिंदगी पर कभी अफसोस नहीं था, अबू लहब को अपनी जिंदगी पर कभी अफसोस नहीं हुआ, और हुआ अफसोस तो ईमान वालों को हुआ कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा वो शख्स जिसके कलमा पढ़ने के बाद अल्लाह ने फुतुहात के दरवाजे खोले और जिसके दुनिया से जाने पर फुतुहात के दरवाजे बंद हुए थे, वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हो हजरत हुजैफा के पास जाकर पूछते थे कि मुझे सरकार ने कहीं मुनाफिकों में तो शुमार नहीं किया? अब्दुल्लाह इब्ने उबई कभी नहीं गया था हजरत हुजैफा साहिब सिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कि मुझे सरकार मुनाफिक तो नहीं कहते। वो अपने ईमान के डंके बजा रहा था, और ईमान वाले अपने ईमान के चले जाने के एहसास की वजह से डर डर कर जिंदगी गुजार रहे थे। सहाबा हुजूर के सामने जोर से हंसते भी नहीं थे, फरमाया जब तक सरकार थे तो खुलकर हंसे भी नहीं, खुलकर हमने खाया भी नहीं, हर वक्त रहते थे सरकार की अदाओं पर कुर्बान, फिक्रें यही रहती थी। फरमाते हैं कि हजरत हंजला ने घर से बाहर निकलकर ये एहसास पैदा हो गया कि मेरी वो कीमती मता लूट ना जाए, मेरा ईमान कहीं चला ना जाए। बड़ी कुर्बानियों के बाद तो ईमान आया है, मारे खाई है, सब कुछ लुटाया है, और दौलत ईमान मिली है, और ये चंद सिक्कों में और चंद दुनिया की मोहब्बतों में अल्लाह की मोहब्बत का कहीं वो धागा छूट ना जाए, ये रस्सी कहीं हाथ से निकल ना जाए, इसलिए ऐलान कर दिया बाहर निकलकर कि मैं मुनाफिक हो चुका हूं। सहाबा में कोहराम मचा, हैरानी थी, लोग मुतहय्यर थे, परेशान थे। आप और सच्चे सहाबी और सरकार के हमेशा हाजिर बाश खादिम, और आप यूं कहें कि मुनाफिक हो गया हंजला, तो हमारे ईमान का होगा क्या? हम कहां रहेंगे फिर? हम किस पल्ले में जाके बैठेंगे? हमारा किस खाने में शुमार होगा? हमारे ईमान को क्या कहा जाएगा? और हजरत सिद्दीक अकबर रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसे जानिसार भी परेशान हो गए और कहा किस बुनियाद पर तुम कहते हो? जब हालत बयान की तो यूं कहा यह हालत मेरी भी है, और यह हालत अगर हमारी है तो हमारे पास जवाब हासिल करने के लिए एक ही रास्ता है कि दरबार रिसालत में हाजिर हो जाएं, सरकार मदीना जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर यह सवाल का जवाब हासिल करें, इसलिए कि हर मुश्किल का हल मिलेगा तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में मिलेगा। इकबाल ने बहुत अच्छी बात कही, उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है। लोग तो कहते हैं तुम्हारा जमाना फिनिश हो गया, तुम्हारी सदियां फिनिश हो गई, 1400 साल हो गए, तुम्हारा वाइंड अप हो गया दीन। लेकिन इकबाल कहते हैं उन्हें तो किरण नजर आ रही है, ये नाउमीदियों में उम्मीद की किरण नजर आ रही है, डूबते हुए सूरज में उन्हें उगता हुआ सूरज नजर आ रहा है, उन्हें इस्लाम की चमक फैलती हुई नजर आ रही है। और फरमाते हैं उठ के अब बज़्मे जहां का और ही अंदाज है, मशरिक व मगरिब में तेरे दौर का आगाज है। लोग तो कहते इख्तिताम हो गया, इकबाल कहते हैं आगाज हो गया है, तैयार हो जाओ, मेहनत करो, दीन पर जम जाओ, तो फिर अल्लाह ताला की नुसरत हर जमाने में हर जगह हो। क्या कहते हैं, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, फिजाए बद्र पैदा कर फरिश्ते तेरी नुसरत को, उतर सकते हैं गर्दों से कतार अंदर कतार भी। फिजाए बद्र चाहिए तो फिर फरिश्ते आएंगे, फिर अल्लाह की मदद आएगी। जरा बद्र के अहवाल पर गौर करो, इसकी तफसील का मौका नहीं है। हजरत हंजला के साथ हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हो भी सरकार के दरबार में पहुंचे, पूरे हालात बयान किए तो मुस्कुराकर सरकार ने फरमाया हर वक्त इंसान का एक ही हाल नहीं होता, दिल का एक ही हाल नहीं होता, कभी यह हाल भी होता है, कभी वो हाल भी होता है। घर में चले गए, घर वालों के साथ हंस लिए, बोल लिए, कुछ जराफत, कुछ दिल लगी हो गई, इससे तुम्हारे ईमान पर कोई असर नहीं पड़ा। और मेरे दरबार की कैफियत अगर कभी खत्म न हो तो फिर यह होगा
کے راستے میں چلو گے تو فرشتے تمہیں سلام کریں گے. یہ کیفیت ہمیشہ نہیں رہتی. بہت سے لوگ کیفیت کے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں, یہ کیفیت چاہیے وہ کیفیت چاہیے. ارے ایمان سلامت ہو انسان کا سب سے بڑی بات وہ ہے. وہ سب سے بڑی کیفیت ہے کہ آدمی گناہوں سے بچ جائے اور وقتوں پر اور اپنے اوقات میں عبادات کر رہا ہو, اللہ کے احکام اس کے سامنے ہو. اس سے بڑھ کر کوئی کیفیت نہیں ہے. کیفیات وقتی ہوتی ہیں, آتی ہیں اور چلی جاتی ہیں. اصل تو اندر کا ایمان لوٹ نہ جائے, اس کی فکر کرنی چاہیے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ احساس بہت بڑی چیز ہے. حضرت حنسلہ کو احساس چلے جانے کا ہوا ایمان کے, اور سرکار کے یہاں گئے تو آپ نے مسئلے کو حل کر دیا کہ اگر اس طرح تم رہے جیسے کہ میرے دربار میں رہے اور اس کیفیت میں ذرا بھی فرق نہ آئے تو وہ عالم ہوگا کہ دامن نچوڑ دو تو فرشتے وضو کریں. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی دو منٹ زیادہ ہو گئی, معافی کے ساتھ بات ختم کرتے ہیں. واخر دعوانا الحمدللہ.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. اشہد ان محمد رسول اللہ. حی علی الصلاۃ حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا
الحمد لله الحمد لله علي الذات عظيم الصفات جليل القدر رفيع الذكر جلي البرهان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله الذي كان يستغفر الله في كل يوم 100 مرة. صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه الذين سارعوا إلى مغفرة من الله وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. أما بعد, فيا معشر الإخوان, اعلموا المؤمن ليس معصوما من الخطيئات. وقد ورد في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم, إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار, ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل, حتى تطلع الشمس من مغربها. فيا عباد الله, أكثروا بالتوبة والاستغفار. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر بالتوبة والاستغفار. قال أبو هريرة رضي الله تعالى عنه, ما رأيت أكثر استغفارا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويقول صلوات الله وسلامه عليه, والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله فيغفر لهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أخطأتم حتى تبلغ خطاياكم السماء ثم تبتم لتاب الله عليكم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل بني آدم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. فتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف ورب رحيم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرحم أمتي بأمتي أبو بكر رضي الله تعالى عنه وأشدهم في أمر الله عمر رضي الله تعالى عنه وأصدقهم حياء عثمان رضي الله تعالى عنه وأقواهم علي رضي الله تعالى عنه وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة رضي الله تعالى عنها والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة رضي الله تعالى عنهما والحمزة أسد الله وأسد رسوله رضي الله تعالى عنه. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون.